पर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, प्रभु पदा जय प्रभु पदा। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि वो नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि वो नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की शील प्रभुपाद की शिशि राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की शिशि बालाजी भगवान की शिशि गौर निताय चंद्र भगवान की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक क्रमांक 7 अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप। पीना आयता अष्ट भुजा मंडला मध्या लक्ष्म्या स्पर्धता श्रिया परिवृतः वनमालया आद्यः बहिर्ष्मता पुरुषः आहा सुताना प्रमन्नाना पर्जन्या नाद रुतया सघृणा अवलोकः पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या स्पर्धश्रिया परिवृतो वनमालयद्य बर्हिष्मतः पुरुषः आह सुतान् प्रपन्ना पर्जन्यनादरुतया सघृणावलोकः पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या स्पर्धश्रिया परिवृतो वनमालयाद्य बहिष्मतः पुरुषः आह सुतान् प्रपन्ना पर्जन्यनादरुतया सघृणावलोकः पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या स्पर्धश्रिया परिवृतो वनमालयाद्यः बर्हिष्मतः पुरुषः आह सुतान् प्रपन्ना पर्जन्यनादरुतया सघृणावलोकः पीना बलिष्ठ आयता लंबी अष्ट
आठ, भुज भुजाएं मंडला घेरा के, मध्य बीच में, लक्ष्म्या लक्ष्मी से, स्पर्धता स्पर्धा करते हुए, श्रिया जिसकी सुंदरता, परिवृतः पड़ी हुई, वनमालया फूलों की माला से, आद्यः आदि भगवान, बहिष्मतः राजा प्राचीन बहिर, राजा प्राचीन बहिर के, पुरुषः भगवान, आह संबोधित किया, सुतान पुत्रों को, प्रपन्नान शरणागत, पर्जन्य बादल के समान, नाद जिसकी ध्वनि, रुतया वाणी से, सघृणा दयापूर्वक, अवलोक अपनी दृष्टि, चित्तवन। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी आठ बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से सुशोभित विभूषित थी, जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बहिर्षत के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। तात्पर्य, इस श्लोक में आद्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म के भी मूल स्रोत हैं। जैसे कि भगवद्गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में पुष्टि हुई है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, परम सत्य निराकार ब्रह्म से प्रारंभ न होकर आदि भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ होता है। जब अर्जुन को कृष्ण की महानता का अनुभव हो गया, तो उसने उन्हें उस प्रकार संबोधित किया। भगवद्गीता में 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अज विभुम, आप पर ब्रह्म परम धाम परम पावन परम तत्व तथा और सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप ही चिन्मय दिव्य सौंदर्य आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। ब्रह्म संहिता का यह भी कथन है, अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, परमेश्वर अनादि है किंतु वह समस्त कारणों का कारण है। वेदांत सूत्र में का कहना है, जन्मादस्य यतः, परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। परम सत्य को आदि पुरुष कहा जाता है, अतः परम सत्य निराकार नहीं अपितु पुरुष है। ओम अज्ञान तीविरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलिता श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले वंदेयहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सर्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषये नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोप राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त विंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा शिल्पोपाद की इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे बीच में सार्वभौम प्रभु भी हैं यहाँ पे नहीं शायद बैठे तो उनके आशीर्वाद से और बाकी जितने वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ उनके आशीर्वाद से इस श्लोक पे मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा जितना हो सके। तो मेरे इस प्रयास को जो है आप लोग सफल कीजिए प्रार्थना करके कि श्लोक पे मैं कुछ अपने शुद्धिकरण के लिए चर्चा कर सकूं। ये अध्याय का नाम जो है प्रचेताओं का जो कार्यकलाप है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो इस अनुवाद में इस श्लोक के अनुवाद में कहते हैं भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी आठ बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से सुशोभित थी जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बहिर्षत के पुत्रों को संबोधित किया जो उनकी शरण में आ चुके थे। यहां पर जो चर्चा है विदुर और मैत्रेय के बीच में हो रही है और बृहस्पति के शिष्य श्री मैत्रेय जी का उल्लेख कर रहे हैं। राजा प्राचीन बहिर के जो पुत्र प्रचेता है ये शिव जी की ही प्रार्थना को जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए दोहरा रहे हैं। तो शिव जी महान वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथाशंभु, और शिव जी की जो प्रार्थना है ये परंपरा में है। ऐसे अनेक अनेक परंपरा है जिसमें चार परंपरा मुख्य है, और इन चारों परंपराओं में से रुद्र संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय के अनुसार इस प्रार्थना को जो है रचयिता भगवान को प्रसन्न करने के लिए रिपीट कर रहे हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा व्याख्या हुई, श्रील प्रभुपाद जी ने इस तत्व को जो है किस तरह से परंपरा में ही हमें किसी चीज को दोहराना, ये भगवान को प्रसन्न करने का मूल कारण बन जाता है। तो एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि आपने अनेक अनेक शब्दार्थ दिए हैं, तात्पर्य दिए हैं भगवद गीता के, भागवतम के, लेकिन उसमें बहुत सारा रिपीटेशन है हर तात्पर्य में, हर तात्पर्य में कहीं ध्यान योग है, कहीं कर्म योग है, कहीं भक्ति योग है, कहीं ध्यान योग है, लेकिन सारे योग में आपने कहा है कि महामंत्र ही जप करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो प्रभुपाद जी के इस रिपीटेशन से हर तात्पर्य में ऐसा पढ़ने से, बोले ये साधारण एकदम भगवत गीता एकदम साधारण पुस्तक है, इसको कोई लेगा नहीं, इसको जब वितरण करते थे श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को तो इस तरह से कमेंट्स आते थे। तो एक बार एक उनके ही शिष्य ने ऐसा कमेंट किया प्रभुपाद जी के आगे, और प्रभुपाद जी ने कहा कि ये इतना साधारण पुस्तक है, नॉर्मल है, ऐसा बोल रहे हैं, सब लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को जब वितरण करने के लिए भक्त जाते थे और उनकी किताबों को जब वितरण करते थे तो इतनी बल्क मात्रा में किताबें सेल होती थी, वितरण होती थी, सबके पास जाती थी, और सब लोग उस तात्पर्य को या उस किताबों को पढ़ करके, जिन्होंने भगवद गीता आज तक नहीं समझी है, ऐसे साधारण लोग भी समझ सकें, इस तरह से प्रभुपाद जी ने उस तात्पर्य को गढ़ा है और बहुत ही अप्रिशिएट है। तो श्री प्रभुपाद जी ने उस भक्त को कहा कि अगर इतनी साधारण किताब है ये, इतना साधारण तात्पर्य है और बहुत रिपीट हुआ है, फिर इतनी सारी किताबें जा क्यों रही है। तो श्री प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता की जो पुस्तक है, जब श्री प्रभुपाद जी ने इसे अनेक अनेक शॉप में या शॉपकीपर्स के पास भेजे वितरण करने के लिए, स्टॉक में रखने के लिए, तो उस समय इतनी ज्यादा वितरण हुई नहीं, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लग गए क्यों वितरण नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो किताब है, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखी हुई किताब है, श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी जो लिखी हुई किताब है, इस भगवद गीता को मेरे ही शिष्य उत्साही भक्त जो हैं ये वितरण करेंगे। तो तब से लेकर आज तक ये श्री प्रभुपाद जी की किताबों को वितरण किया जा रहा है, और आज तक ऐसा रिकॉर्ड है कि भगवद गीता इस्कॉन के द्वारा जो वितरण की गई है, इतनी भगवद गीता वितरण और किसी भी स्थान पर नहीं हुई, और सब इस भगवद गीता को पढ़ करके भक्त बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो रिपीटेशन है, जो रिपीट होता है, कोई भी शब्द जो आचार्यों का है, उन आचार्यों के शब्दों को रिपीट करने से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में भी गढ़ा है, रिपीट किया है उसको। तो ये चीजें जो है हमें बहुत ही साधारण तरीके से लगती है कि ये बहुत ही साधारण है, हमने तो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया, जो था बना बनाया उसको ही ले लिया वापस, और उसको लेने से कौन सा हमने बड़ा कार्य कर दिया, कुछ बड़ा कार्य नहीं किया, लेकिन उस चीज को लेना ही सबसे बड़ा कार्य है। हम कुछ अलग से कुछ मैन्युफैक्चर करें, इसमें कोई तत्व ही नहीं है, कोई परंपरा ही नहीं है और कोई रस ही नहीं है। तो यहां पे माधवाचार्य के अनुसार जो है अनेक अनेक उपमाएं दी गई हैं, जैसे पुरंजन, ये जो उपाख्यान है, पुरंजन शब्द में जो पूर्व शब्द है जिसमें भगवान भी उसमें आवेशित होते हैं, आते हैं, तो जीवात्मा को भी एक पुरंजन कहा गया है, परमात्मा को भी एक पुरंजन कहा गया है। लेकिन दोनों ही जब एक विभू में है, एक अणु में है, जब अणु विभू की सेवा करता है परंपरा से आए हुए तत्वों को लेकर के, तब भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और आगे बताया गया है कि जो प्रचेता है, ये जो रुद्र संप्रदाय में आकर के जो प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान ने जो दर्शन दिया उस दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, इस प्राप्त करने के उस तत्व को जितना उन्होंने परिश्रम किया है, क्योंकि भगवान का एक तत्व है, उनका नाम ही है भावग्राही जनार्दन, वो किसी के कार्यों को देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं कि कैसे वो प्रार्थना कर रहा है, कितने प्रोफेशनल ढंग से कर रहा है, कितने उसके शब्द बहुत अलंकारी हैं, कितने स्पष्ट हैं, इन सारे चीजों को देख करके भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन इन सारे चीजों को करते हुए जो उसका इंटेंशन है, जो उसका भाव है, उस भाव को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए अनेक अनेक जितने भी देवी देवता हैं, उन सबको प्रसन्न करने से भी ज्यादा सरल प्रसन्न करना भगवान को प्रसन्न करने का जो एक तत्व है, कि भगवान को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। बाकी देवी देवताओं को प्रसन्न करने अगर जाएंगे हम कितने ही अनेक अनेक प्रार्थनाओं से, तो शायद उसमें अगर कुछ गलती हो गई तो पूरी तरह से उल्टा रिएक्शन आ जाता है, क्योंकि शब्दों का वहां पे अलंकार है। जब देवताओं का कोई यज्ञ या कोई अनेक अनेक शब्द उच्चारण होता है, श्लोक उच्चारण होता है संस्कृत में, और उन सारे संस्कृत के शब्दों में जो लय है, वो लय में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो सारा चीज जो है नुकसान हो जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि अगर कोई किसी को पानी देने गया और पानी देते समय उसने पूछा, क्योंकि पानी दे रहे हैं, और उसने पूछा कि कितना पानी चाहिए, बोले ठीक है भर दो, तो भरते हुए ग्लास में जब आधा भर गया तो उसमें उसके शब्द निकलेगी, बस अब नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे ही शब्द में अगर हम देखेंगे कि जब वो आधा गिलास भर के ही अगर वो रोक रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा बस इतना ही, तो शब्द एक ही है कि वो रोक रहा है, एक शब्द में उसका रुकावट है, और एक शब्द में क्या है कि बस इतना ही और भर दो, और चाहिए पानी। अर्थात ये सब जो अलंकारी शब्द है, इसमें उतार चढ़ाव है, लेकिन भगवान के नाम में कितना भी उतार चढ़ाव करो, कितना भी जोर से गाओ, कितना भी उल्टा नाम, जगत जग जाना वाल्मीकि भया ब्रह्म समान। भगवान का नाम नारद मुनि बोल रहे थे कि आप लीजिए राम का नाम लीजिए, लेकिन जो वाल्य कोली थे वो क्या बोल रहे थे, मरा मरा मरा। तो नारद जी ने क्या कहा, तुम मरा मरा ही जपो, लेकिन वो मरा मरा जपते जपते वो क्या हो गया, राम राम हो गया। लेकिन अगर किसी ऐसे देवी देवताओं का नाम अगर हम उल्टा जपेंगे तो तुरंत क्रोधित हो जाएंगे या किसी मंत्र से। तो भगवान में और देवी देवताओं में यही फर्क है, और भगवान को प्रसन्न करना इतना सरल है कि केवल आप पूर्व के आए हुए आचार्यों के वाणियों को समझ करके उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, तुरंत भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान भावग्राही हैं, भाव को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। भगवान की लीलाओं में ऐसा देखा गया है कि जैसे अभी यशोदा माता जो है, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उन्होंने अनेक अनेक असुरों को मारा, उसमें से एक असुर था शकटासुर। ये शकट के नीचे जो स्थान था वहां पे भगवान बैठे थे खेल रहे थे, जो भी है छोटे थे। और भगवान जो है, क्योंकि उनको भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो चिल्ला रहे थे, मां को बुला रहे थे, और मां सुन नहीं रही थी। यशोदा माता जो है अनेक अनेक चीजों में व्यस्त थी, व्यवहार में व्यस्त थी, वो अनेक अनेक से बातें कर रही थी, कुछ कर रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रही थी। यानी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही अनेक अनेक सेवाओं में व्यस्त थी वो, लेकिन भगवान की बात को सुन नहीं पाई, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा कोलाहल था। तो यहां पे तत्व में बताते हैं आचार्यगण कि ये जो कोलाहल था जिसके कारण मां सुन नहीं पाई और भगवान बुला रहे थे, इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने भक्तों को बुलाते हैं तो उनका इंटेंशन ये होता है कि वो उनकी सेवा करें या उन्हें कुछ चाहिए। तो यहां पर ये जो शकट था, शकट के ऊपर बहुत सारे सामान लदे हुए थे। तो इसकी उपमा आचार्य देते हैं कि जब ये शकट के ऊपर इतने सारे सामान लदे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण नीचे थे, तो भगवान मां को बुला रहे थे लेकिन मां सुन नहीं पा रही थी। तो यहां पर जो कृष्ण है, जो छोटे से कृष्ण है, वो बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर के उन्होंने उस शकट को जो है अपने चरणों से छुआ। जैसे उन्होंने शकट को जो जैसे ही अपना चरण लगाया, वो शकट जो है बहुत ही ऊपर जाकर के वो टूट गया। हालांकि वो एक असुर था, लेकिन इसमें आचार्यगण तत्व देते हैं, संज्ञा देते हैं कि उस शकट के ऊपर अनेक अनेक वस्तुएं रखी हुई थी, अनेक अनेक सब लाद के लाते हैं ना सामान, किराना माल, चावल, दाल, आटा, तेल, ये सब रखा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण का पुकार न सुनने के कारण भगवान को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ हो सकता है, ऐसा दिख रहा था। तो भगवान यहां पे दिखाना चाहते हैं कि जो जब कोई मेरी पुकार नहीं सुनता है या जो मेरी बात कोई नहीं सुनता है, तो उसका अर्थ क्या है कि मेरे से भी ज्यादा प्रायोरिटी उस चीज पे, उन विषयों पे दी जा रही है जो कि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो विषय क्या थे? वो विषय थे जो शकटासुर के शकट के ऊपर जो रखे हुए वस्तुएं थी। तो उन सारे अनेक अनेक वस्तुओं को भगवान के ऊपर अर्थात भगवान से भी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो इस प्रायोरिटी को देख करके भगवान को क्रोध आ गया कि अगर हम भगवान से भी ज्यादा और किसी वस्तु को महत्व देते हैं, तो महत्व देने के अनुसार वो क्या हो जाता है? भगवान से नीचे आ जाता है। यानी भगवान बाद में आएंगे, पहले हम आएंगे। तो कलयुग का एक सबसे बड़ा दोष यही है, कलौ दोष निधे राजन अस्थिर एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित। तो कलयुग में धर्म एक ही पग पर खड़ा है, इसके चार पैर टूट चुके हैं, लेकिन जो एक पैर है सत्य का, वो सत्य कौन है? केवल भगवान है, और कोई सत्य है ही नहीं। जितने भी सत्यवादी आए हुए हैं इस जगत में, उन सबसे ऊपर का सत्य कौन है? कृष्ण है। तो सत्यमेव जयते कहा गया है, सत्यमेव जयते बोलते हैं, तो सत्यमेव जयते वास्तविक कौन है? कृष्ण है। यहां पे कलयुग में कलहो दोष निधे राजन अस्थिर एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। अर्थात भगवान को ज्यादा प्रायोरिटी न दे करके इस कलयुग में अनेक अनेक विषयों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और शास्त्र में भी इसका मत दिया गया है। जब पुरुषार्थ का उल्लेख हुआ तो सबसे पहले धर्म का नाम दिया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तीन सारे प्रायोरिटियों को देखते हुए जिस युग में हम हैं, उस युग में जो परंपरा है, जो शिल्पोपा जी के द्वारा और अनेक अनेक आचार्यों के द्वारा दी गई है, उन सारे परंपराओं में जब हम रिपीट करते हैं भगवान की प्रार्थनाओं को, तब भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो एक बार ऐसा हो गया कि अर्जुन, अब ये पांचों रसों में से अर्जुन जो है ये साख्य रस में है। अब भगवान रस से आदान प्रदान करते हैं। तो अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब युद्ध होने वाला था, तो उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्थात यहां पे जो विषाद योग का जो एक रस है, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए विषाद योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी को इस तरह से विषाद आता है कि पूरी तरह से निराश हो जाता है और अनेक अनेक कार्यों को करने के लिए वो पूरी तरह से बाजू हो जाता है, यानी कि उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता, उस समय भी अगर वो भगवान के ही द्वारा या भगवान के ही पास जाकर के उन सारे चीजों को खोले अपने हृदय को, तो क्या होगा, वो व्यक्ति भगवान से संपर्क होने के कारण वो चीज उसके लिए योग बन जाती है। यहां पे अर्जुन भी भगवान के उस शब्द को या जो प्रायोरिटी थी उस शब्द को जो है क्या नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, अर्थात कुछ बोल नहीं रहे थे, केवल सुन रहे थे। अर्जुन जो भी बोल रहा था उसको भगवान सुनते जा रहे थे, उसका कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे थे। अर्थात अर्जुन के इस विषाद योग के जितने भी वाक्य थे, जितने भी शब्द थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, ये मेरे कारण है, उन सारे कारणों को भगवान सुनते गए। क्योंकि वहां पर जो विषाद योग में जो कारण बताया गया है वो भगवान से ज्यादा लिंक नहीं करते हैं, अर्थात भगवान के शब्दों को वहां पे न रख करके अपने शब्दों को रखा गया है कि मैं ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। यहां पे वो जो परंपरा का लिंक है वो टूटते हुए दिख रहा है। लेकिन फिर भी भगवान के संपर्क में आने से अर्जुन जो है वो क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें अर्जुन भगवान को बता रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं, और अर्जुन इन सारे विषयों को, जितने भी तर्क हैं, उन सारे चीजों को बताते हुए अंत में जाकर के वो क्या बोलता है अर्जुन, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्थात जब भगवान को छोड़ करके हम किसी विषय को ऊपर उठा करके लेते हैं, तो उसमें कितने ही तर्क, कितने ही सत्य हो, हम कितनी ही उसकी मान्यता दे दें, लेकिन वो सारे तर्क हमारे जीवन को सफल करने के लिए असफल हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब अर्जुन पूरी तरह से थक गया, पूरी तरह से बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अपने ही तर्क को भगवान को बताते हुए असफल हो गया, तब भगवान ने या भगवान को अर्जुन ने स्वीकार किया। इसमें इस श्लोक में एक शब्द आया है जिसमें कहा गया है कि प्रणिपात अर्थात शरणागति होनी चाहिए। जब तक शरणागति नहीं है, वह व्यक्ति उस ज्ञान को, इस परंपरा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। यहां पे शरणागति कब आई अर्जुन को, जब वो पूरी तरह से इस अपने ही तर्क वितर्क से फ्रस्ट्रेट हो गया। तो भौतिक विषयों से जब तक कोई पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, तब तक वो शरणागति लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता है। लेकिन उसी तर्क में वो खेलता रहता है। जब अर्जुन ने ऐसा कहा कि हे प्रभु, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा, अर्थात अर्जुन भगवान को अनेक अनेक तरह से तर्क करके जो है अपने इच्छा को व्यक्त कर रहे थे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, लेकिन उसी इच्छा को जब उन्होंने देखा कि ये मेरे किसी काम की नहीं आ रही है, तो उन्होंने फिर भगवान की शरणागति ली। तो भगवान की शरणागति लेने के उपरांत भगवान ने उन्हें कुछ शब्द कहे। क्या कहा उन्होंने, अशोच्यानं शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन गताशुंश नानुशोचन्ति पंडिताः। शरणागति का एक लक्षण है कि शरणागति लेने वाला व्यक्ति जो है कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन जिसकी वो शरणागति ले रहा है उस शरणागति लेने वाले व्यक्ति के सामने उसे अपने आप को मूर्ख समझना है। जैसे हम अपने गुरु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन से प्रार्थना नहीं करते हैं कि हम इतने क्वालिफाइड हैं तो हम ये प्रार्थना करेंगे। एक बार हिजोलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज आए थे यहाँ पे, अभी तो कुछ दिन पहले आके गए, कल परसों। तो हमारे एक भक्त थे जो बहुत ही एक मेडिकल में बहुत ही उन्होंने डिग्री हासिल की थी और बहुत सारे उनको अनुभव भी थे। तो उन्होंने महाराज को खाली इतना ही पूछा कि महाराज मैं इन सारी चीजों को जानता हूँ, कैसे मसाज करना चाहिए, कैसे तो मैं अगर आपका इस तरह से मसाज करूंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से लगेगा, अच्छा संतुष्टि होगा। तो गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा कि नहीं नहीं आप रहने दो। तो उस समय उस भक्त के मन में आया कि भाई मेरी इतनी क्वालिफिकेशन थी, इतना सारा टैलेंट था, उसके बाद महाराज ने मेरी सेवा को एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेवा करने वाले के हृदय में जो भावना है वो टैलेंट के बेसिस पे है, तो टैलेंट जो है वो उसका क्या है? रुकावट है। भगवान की बात को न सुनना, जैसे भगवान कृष्ण बुला रहे थे यशोदा माँ को, लेकिन यशोदा माता सुन नहीं पा रही थी, अनेक अनेक चीजों में लगी हुई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रही थी? कि भगवान के लिए आने का अलग अलग सामग्री, कुछ लाना है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, लेकिन उन सारी चीजों से ज्यादा है कि भगवान क्या बोल रहे हैं वो पहले सुनना है। अगर हम भगवान कृष्ण की भी सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और गुरु और कृष्ण ये दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर हमें बुलाते हैं, हम जैसे चैंटिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या देते हैं? नहीं, ये सारी चीजें करनी जरूरी है, हालांकि कोई और बुला रहा है कुछ और सेवा में, लेकिन ये चीजें हम कर देंगे। तो इसमें एक उदाहरण आता है कि एक गुरु थे जिनके अनेक शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य था, उसको गुरुजी ने कहा कि अभी सुबह सुबह का समय है, भगवान के लिए भोग बनाना है, तो तुम जंगल से लकड़ियां लेके आ जाओ। तो उस शिष्य ने क्या कहा कि मेरा जप बाकी है। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तो दिया है माला, अभी जप बाकी है तो करो। फिर गुरुजी गए जंगल में जाकर के लकड़ियों को काट के लेके आ गए। फिर बाद में कहा कि गुरुजी ने कहा कि ठीक है अभी लकड़ियां लेके आ गया मैं, अभी थोड़ा जलाओ, चूल्हा करो, थोड़ा आटा गूंदो भगवान के लिए भोग बनाने के लिए। तो शिष्य बोलता है मेरा जप बाकी है। फिर अनेक अनेक चीजें गुरुजी ने ही कर दी, चूल्हा जलाया, आटा गूंदा, रोटी बेला सब। अभी गुरुजी ने कहा भोग लगा दो, तो बोला मेरा जप बाकी है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है मैं ही भोग लगा देता हूं। सब कुछ हो गया, भोग तैयार हो गया, तो गुरुजी ने कहा कि अभी भोग तैयार है, आप प्रसाद ले सकते हो। बोले मैं अभी आता हूं। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि है गुरुजी की सेवा में, गुरुजी ने माला दी है, महामंत्र भी गुरुजी ने ही दिया है, लेकिन जब गुरुजी कुछ बोल रहे हैं करने के लिए तो उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया कि गुरुजी के शब्दों से भी ज्यादा हम किस चीज पे महत्व दे रहे हैं। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि माला करना चाहिए, तो माला पे इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि सारी सेवा ही भूल गए, है ना। तो इसी चीज को कहा गया है कि भगवान और गुरु के शब्द हमारे हृदय को किस तरह से छेद सकते हैं। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को कुछ नहीं बोला, कब तक नहीं बोला? जब तक वो विषयों या अपने तर्क वितर्क से लगा हुआ था, क्योंकि उसमें भगवान कुछ बोल देते तो वो भी तर्क वितर्क में आ जाता। जब सारे तर्क वितर्क अर्जुन के खत्म हो गए, परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला कि आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा, तब भगवान के मुख से वो शब्द निकले। क्योंकि जब तक इस भौतिक जगत के इस वास्तविक चीज से हमारा अनुभव नहीं होता है, तब तक भगवान के शब्द इस हृदय में पहुंचते ही नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो परंपरा का जो एक लिंक लिया है, यहां पे भी जो परंपरा से प्रचेताओं ने जो भजन किया है, इसमें एक चीज है कि जब हम किसी चीज को परंपरा से लेते हैं तो उसमें तर्क वितर्क की संज्ञा बहुत कम रहती है, रहती नहीं है। तर्क वितर्क रहता नहीं है, संशय रहता नहीं है, और इन सारे चीजों को लेकर के जब हम पूरी तरह से विश्वास पूर्वक इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो भगवान को वहां पर प्रकट होने के लिए देर नहीं लगता। इसलिए इस कलयुग में ये कलह का जो युग है, ये कलह का युग क्यों है? क्योंकि भगवान को छोड़ करके, भगवान के शब्दों को छोड़ करके हम अपने ही तरीके से इस धर्म को करने का प्रयास कर रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज को करने का प्रयास कर रहे हैं और अनेक अनेक अच्छे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे कार्य जब फेल हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उसमें परंपरा निहित नहीं है या भगवान निहित नहीं है। हम कितना ही अच्छा करें, अगर उसमें गुरु और कृष्ण की अगर कृपा ना हो तो वो चीज इतना प्रयास करने के बाद भी, इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी वो फेल हो जाता है। जैसे अर्जुन का क्वालिफिकेशन फेल हो गया। ध्रुव महाराज जब अपनी मां की बात को सुन करके वो गए जंगल में, और नारद मुनि ने उनको टेस्ट किया कि भाई अभी तो बच्चे हो, 5 साल के हो, इतना क्या करना है, घर में जाके खेलो कूदो, ये सब तो होता रहता है। लेकिन मां के शब्दों को, मां उस समय उनके लिए गुरु है, और उनके शब्दों को इतना प्रायोरिटी दिया कि नारद मुनि को भी ध्रुव महाराज ने क्या कहा कि अगर आप मुझे भगवान से मिला सकते हो तो कुछ बात करो, नहीं तो हमको बात करने की जरूरत नहीं। बाकी मेरी कितनी उम्र है, मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए, ये सब बात नहीं, आप मुझे भगवान को मिला सकते हो क्या? ये ध्रुव महाराज ने इस बात को सुन करके नारद जी का हृदय जो है पूरी तरह से क्या हो गया, भावग्राही हो गया, भाव पूरी तरह से किया, ये जो लड़का है, ये जो ध्रुव है, इसे इसके लक्ष्य से मेरे ये शब्द हटा नहीं सकते। तब नारद जी प्रसन्न हो गए, उन्हें मंत्र दिया और मंत्र देकर के उनके नियमों को बताया, और उस नियमों को जाकर के जब 6 महीने में ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान को प्रसन्न करने के बाद गुरु की आज्ञा पालन करने से, भगवान का दर्शन करने मात्र से उनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। लेकिन ध्रुव महाराज किस लिए आए थे? अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए आए थे। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं। तो यहां पर ध्रुव महाराज जो हैं, अपने पिता से भी बड़ा राज्य, अपने पिता की गोद में न बैठने के उस शोक से संतप्त होकर के आए थे। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो उन सारे जितने भी इच्छाएं उनकी थी वो सब कट गई। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब हम अपने क्वालिफिकेशन से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं तो सारे जितने भी इच्छाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती है। तो जैसे ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, गुरु की कृपा से, नारद जी की कृपा से उस दर्शन को उन्होंने परंपरा में किया, इसलिए उनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। अगर ध्रुव महाराज के मन में यह क्लेश आता, ये मन में आ जाता कि मैंने अपने प्रयास से भगवान को प्रसन्न किया है, इसमें नारद जी का कोई रोल ही नहीं है, उन्होंने तो खाली मंत्र दे दिया, मैंने जपा, जपने के लिए तो मैं ही जप रहा था, हवा पानी तो मैंने ही छोड़ा, इतने सारा त्याग किया तब 6 महीने के बाद भगवान प्रसन्न हुए, नारद जी का क्या रोल है? तो किसी व्यक्ति की कृपा को अपने प्रयास से उसको तुलना करना और उस तुलना में अपने प्रयास को ज्यादा आगे बढ़ाना, ये उस व्यक्ति का अपमान हो जाता है जिस व्यक्ति ने आपको उस ऑथराइज चीज को दिया है। तो इसी चीज को हर प्रसंग में लिया जाता है। प्रहलाद महाराज के साथ तो अनेक अनेक घटनाएं घटी है। होलिका ने जब प्रहलाद को लिया हाथ में, क्योंकि उन्हें जलाना था, और हिरण्यकश्यप को यही बुद्धि थी कि कैसे इस लड़के को जो है कि मैं भगवान हूं, इसका उसे भान होना चाहिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। तो अपनी शक्तियों को प्रदर्शन किया हिरण्यकश्यप ने, अनेक अनेक तरह से उनकी बहन होलिका को बुलाया, और होलिका को वरदान था कि उसको आग जलाएगा नहीं, ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। और प्रहलाद को लेकर के वो बैठ गई, लेकिन थोड़े ही समय के बाद प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं, उल्टा होलिका ही जल गई। अर्थात जब हम अपनी शक्तियों का उपयोग, हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति का उपयोग कहां किया, प्रहलाद को नष्ट करने के लिए। अब प्रहलाद के गुरु कौन है, नारद, अर्थात प्रहलाद भी परंपरा में है, ऐसे नहीं किसी शक्ति को प्राप्त करके उन्होंने कुछ किया है। लेकिन यहां पे हिरण्यकश्यप जो है वो जब इस तरह से प्रहलाद के मन में अपने भगवान होने के उस शक्ति को जो है जागृत करना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, देखो मेरी कितनी शक्ति है, मैं तुम्हें भी जला सकता हूं, तुम्हें भी मृत्यु दंड दे सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, लेकिन यहां पे तो भगवान ही उसको बचा रहे हैं। आई हिरण्यकश्यप को समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं इतना प्रयास कर रहा हूं इस पुत्र को मारने के लिए, इस लड़के को मारने के लिए, लेकिन फिर भी इसका कोई बचा रहा है। इतना होने के बाद भी हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा कि मैं इतनी शक्ति लगा रहा हूं, तुम्हें बचाने वाला कौन है? तो प्रहलाद ने एक ही उत्तर दिया। देखिए प्रहलाद का तत्व ज्ञान क्या था, प्रहलाद ने कहा कि जो मुझे बचा रहा है वही तुमको मारने की भी शक्ति दे रहा है। एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? कृष्ण। इसलिए कृष्ण का नाम जब हम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो इस कृष्ण के नाम को अगर हम परंपरा में गुरु की आज्ञा के अनुसार ले रहे हैं, फिर भी अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो ये सारा नाम जो है एक अल्फाबेट में चला जाता है, और केवल हम क्या करते हैं, जैसे क ख ग घ होता है वैसे ही हम उसको दोहराते रहते हैं बस, और एक ही प्रयास चलता रहता है, एक लेबर क्लास जॉब चलता रहता है। और ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि हम कितना ही प्रयास करें, अगर उन सारे प्रयासों से भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो क्या है वो, श्रम है वही केवल। तो हमें, हमारा प्रयास जो है वो श्रम में ना चला जाए, वो भगवान को प्रसन्न करने के हेतु हो, यही इसकी प्रायोरिटी है। तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे प्रहलाद महाराज को होलिका ने जब लेके अपने गोद में बैठी तो होलिका जल गई, तो ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हो गए, क्योंकि होलिका ने बुलाया ब्रह्मा जी को, भाई आपसे वरदान लिया था, क्या हो गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने वरदान दिया था कि तुमको आग नहीं जलाएगा, लेकिन जिससे मैं वरदान लेने के लिए ऑथराइज्ड होता हूं, मैं जो वरदान देता हूं वो मेरे शक्ति से थोड़ा देता हूं, वो तो मैं भगवान की शक्ति से देता हूं। मैं जो भी बोलता हूं किसी को, वो भगवान ही उसको सैंक्शन करते हैं कि भाई इसको आग नहीं जलाएगा, क्योंकि मेन ऑथराइज्ड पर्सन वही है। तुम उनके ही भक्त को जला रही हो गोद में रख करके, ये कैसे संभव है कि वो जल जाएगा? वो जल ही नहीं सकता। वो इसमें भी एक परंपरा है जिसमें लिंक टूट जाता है। कैसे लिंक टूटता है कि जैसे होलिका को वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, लेकिन होलिका को ये पता ही नहीं कि ब्रह्मा जी को भी किसी से ऑथराइज मिला हुआ है, और बैठी है किसको लेकर के, प्रहलाद को लेकर के। अर्थात भगवान के भक्तों को या भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसे इस जगत के नियम से कोई लेना देना नहीं है, उसके केवल उसको केवल भगवान के ही नियम से लेना देना है। तो भगवान का जब दर्शन होता है तो अगर वो ऑथराइज्ड वे में हो रहा है तभी हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन आता है। इसलिए तो कहा गया है कि जब हम किसी से सुनते हैं भगवान की कथा को तो किसी परंपरा में आए हुए भक्तों से सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे, सुनने में तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन उस आनंद में कृष्ण नहीं रहेंगे, वो आनंद विषयों का हो जाता है, इसलिए वो आनंद जो है अंत समय में बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है उस आनंद को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि विषयों का आनंद और भगवान का जो एक भक्ति का आनंद है, वो दोनों में जब तक हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम भक्त नहीं है। भक्त एक हंस के समान है जो पानी और दूध को अलग कर सकता है। उसी तरह से एक परम हंस भक्त जो है, वो भौतिक सुख में और आध्यात्मिक सुख में कितना अंतर है उसमें वो परांगत होना चाहिए। इसलिए भगवान विषयों का सुख भी देते हैं और भक्ति का सुख भी देते हैं। हमें दोनों में से कौन सा लेना है, वही वास्तविक हमारी परीक्षा होती है। तो भगवान दोनों प्रायोरिटी रखते हैं। जैसे एक महामंत्र है, कभी कभी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप अगर हमें ये दे देंगे तो हम बहुत अच्छी माला जप करेंगे, बहुत अच्छी सेवा करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी सेवा रहेगी। और वो जब कोई चीज मिल जाती है तो वो व्यक्ति उतना कर नहीं पाता है, जैसे नेचुरल है। जैसे किसी ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे गाड़ी देंगे तो रोज मंगल आरती में, वो मंगल आरती आना भूल गया वो। तो कुछ मांगने से जो मिलता है उसको लेकर के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रभु आप हमें ये दे देंगे, हमारा कमिटमेंट कुछ रहता है भगवान से और उस कमिटमेंट को हम पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जो भगवान ने हमें ऑलरेडी दिया है मांगने के पहले ही, उन सारे वस्तुओं को जो भगवान ने नेचुरल में दिया है, जो आपके आपने कभी मांगा नहीं लेकिन एक बेसिक नेसेसिटी दी है, उस नेसेसिटी में अगर आप भक्ति करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो भगवान और फैसिलिट कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो भगवान ने दिया है अपने आप बिना मांगे, और उस चीज में अगर हम संतुष्ट हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन वो चीज भी रख करके हम ये सोच रहे हैं कि भगवान और कुछ देंगे और हम उसको फिर यूटिलाइज करेंगे भगवान की सेवा में, तो ये क्या हो जाता है, विषयों का सुख ऊपर आ जाता है। और जैसे विषयों का सुख ऊपर आता है कि हमें ये मिल जाएगा तो हम ये कर देंगे, ये मिल जाएगा तो ये कर देंगे, तो वो कुछ कर नहीं पाता है। अर्थात जो सुख में भी भगवान का नाम उसी तरह से ले रहा है और दुख में भी भगवान का नाम उसी उत्साह और उसी आनंद से ले रहा है, तभी वो दोनों को पार करके परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि सुख आया तो उसने भगवान का भजन किया और दुख आया तो भगवान का भजन नहीं किया। दोनों ही प्रायोरिटी उसके लिए एक ही जैसी है और दोनों में ही वो भगवान का नाम बड़े ही उत्साह के साथ लेता है, तभी वो भगवान का भजन सही तरीके से कर सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। तो इसको बोलते हैं वास्तविक उत्साह। वास्तविक उत्साह कब पता चल जाए, जब दोनों ही चीजों में। तो यहां पे उदाहरण दिया गया है पांडवों का और पांडवों की माता कुंती का। जितने भी दुख पांडवों को हुए, उन सारे दुखों में भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे। लेकिन जब सब कुछ मिल गया, सारा युद्ध हो गया, सारा युद्ध संपन्न हो गया, और भगवान श्री कृष्ण अभी सब कुछ दे करके, उनका जितना भी छीना गया था सब कुछ लौटाते हुए देख करके भगवान श्री कृष्ण वहां से जा रहे थे, तब कुंती महारानी ने क्या प्रार्थना किया। कुंती महारानी ने प्रार्थना किया कि अभी आप जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा दुख है। सब कुछ मिल गया, इसका सुख तो है, कुंती महारानी का सुख है कि सब कुछ मिल गया है, लेकिन भगवान जा रहे हैं इसका दुख है। तो उसका दुख होने के कारण यह सुख भी क्या हो गया, दुख में बदल गया। भगवान ने कहा कि इतना सब कुछ तो मिल गया, सब कुछ आपका जितना छीना गया था सब प्रॉपर्टी वापस आ गई, तो सब प्रॉपर्टी वापस आने के बाद भी तुम सुखी क्यों नहीं हो, क्योंकि इतना सब कुछ आने के बाद भी आप जा रहे हैं यहां से। मतलब एक भक्त का भाव जो है, एक परंपरा में जब एक हृदय परिवर्तन होता है, उस हृदय के भाव को हम अनेक अनेक भागवतों से देख सकते हैं। जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, प्रभुपाद हैं, तो ये सारे भाव जो ऑथराइज रूप में परंपरा से आते हैं, उन भावों को लेकर के जब हम भगवान के उस प्रयास करते हैं, किसका सेवा करने का, उन भावों को प्रकट करते हैं भगवान के आगे, तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अरे वो तो उनका भाव है, हम क्यों प्रकट कर रहे हैं, हमें अपना भाव प्रकट करना चाहिए। तो हमारे पास भाव ही नहीं है ना, भाव का बहुत अभाव है। अब भगवान क्या है? भावग्राही जनार्दन है। तो जो जैसा भसता है भगवान उसी तरह से उसको दर्शन देते हैं, तो जो जैसा भसता है उसको उसी तरह से दर्शन देते हैं। लेकिन वो अगर परंपरा में ना हो तो दर्शन भी क्या हो जाता है? छुप जाता है, वो दर्शन हो नहीं पाता। तो दर्शन होने का अर्थ ही है, जैसे कुंती महारानी भगवान का दर्शन कर रही है तो भगवान का ही दर्शन कर रही है वो, और भगवान के न रहने से जो दुख उनको प्रकट हो रहा है उस भाव को वहां पे प्रकट कर रही है। तो भगवान से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि प्रभु आप मत जाइए, क्योंकि आपका दर्शन ही हमारा सबसे बड़ा सुख है। अगर इन सारे चीजों को देने के बाद आप जा रहे हैं तो आप इन सारे चीजों को ले लीजिए। जैसे विषय सुख होता है, तो विषयों के सुख को अगर हम धारण करेंगे और भगवान की सेवा के लिए आएंगे तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि परंपरा में क्या कहते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हे रिवो श्री वृंदावना। बहुत सुंदर है। जब तक हम विषयों के उस तत्व को छोड़ेंगे नहीं, उस आसक्ति को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम वृंदावन या भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए परंपरा का इसमें महत्व है। और यहां पे श्लोक में जो प्रचेता है ये क्या कर रहे हैं, परंपरा में भगवान शिव के द्वारा जो गीत गाया गया है रुद्र गीत, उस गीत को जो है दोहरा करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। बस हमें भी यही करना है कि प्रभुपाद जी ने जो हमें तात्पर्य दिए हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शन को, तात्पर्य को, और जिस तरह से भक्ति करने के लिए बताया है उसी तरह से हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें कुछ नया नहीं जोड़ने की जरूरत है। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण जो थे, कैसा ब्राह्मण भोजनम प्रिय सबको पता है कि नहीं। तो जो ब्राह्मणी ने जो है अनेक अनेक वस्तुएं लाई, भोजन पकाया, भगवान को भोग लगाया, और जब ब्राह्मण जी आए खाने के लिए तो उनको दिया पंखा होगा सब होगा, फिर भी उनको खाते खाते पसीना आ रहा था। तो ब्राह्मणी हैरान हो गई, बोले सब कुछ मैंने किया, इधर से वो लाया मैंने, बनाया मैंने, आपको पसीना क्यों आ रहा है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, चबा कौन रहा है, तुम्हारा बाप? इसका अर्थ यह हुआ कि चबाने में भी उसको इतना प्रयास करना पड़ रहा है। अर्थात शिल्प उपाजी ने हमें परंपरा में सब कुछ दे दिया है, और शिल्प उपाजी ने यह कहते हुए अपने शिष्यों से क्या कहा कि मैंने जितना प्रयास किया है, जितना कष्ट मैंने झेला है, उन सारे कष्टों को आपको झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सब कुछ आपके लिए एकदम रेडी रख दिया है, अभी आपको क्या करना है, केवल उसको मेंटेन करना है और आगे बढ़ाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इसी तरह से हम परंपरा में भक्ति करें, यही प्रार्थना इस श्लोक के द्वारा जो है प्रकट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।